जी बिस्मिल्लाह कीजिए।
सर
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, सर मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग जो स्टोन्स पहनते हैं, जो हम कहते हैं कि ये मैं पहन रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बर्थडे मंथ से रिलेटेड है, इट इज फॉर लक, या फिर ये मेरी हेल्प करेगा, सर ये एक मिसकंसेप्शन है या ये क्या चीज है सर, प्लीज आप एक्सप्लेन करेंगे।
बिल्कुल विद प्लेजर। देखें, मिसकंसेप्शन तो नहीं कह सकते, ये एग्रीवेटेड है बात। बात को बढ़ा चढ़ा के खुद पे नाफिज और तारी किया हुआ है, सर में घुसेड़ा हुआ है। ठीक है, हकीकत क्या है? हकीकत इतनी सी है कि इंसान को रंगों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो रंगों से बना है। आलम नासूत को आलम रंगोबू भी तो कहते हैं ना। इंसान का जो ये मादी वजूद है, ये कहते हैं मट्टी से बना है, मट्टी रंगों का मजमुआ है। जब आपको ये अच्छा, रोशनी भी रंगों का मजमुआ है। रोशनी के जोन में रंगों का मजमुआ सफेद है और मादी जोन में रंगों का मजमुआ खाकी है, मट्टी। गौर करें तो ये बात जब आपको वाजे हो गई कि सारा खेल रंगों का है, तो होता यह कि जिस रंग की जिसमें कमी हो उसको वो रंग अच्छा लगता है। अगर वो रंग पत्थर की सूरत में पहनता है तो गोया वो उस रंग की सप्लाई उसके वो जो रंगों का जिस्म है, बरकी जिस्म है, उसको एक तरह का मसलसल फीड होता रहता है। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज जरा शोर आ रहा है, इसको ऑफ करें। जी थैंक यू। तो ये बात वाज़े हो गई
जी सर।
क्या कि इंसान चूंकि मादी जोन में रंगों से बना है, और वो रंग जब मटेरियलाइज हो गए तो आपका बॉडी का फ्लैश एंड बोन बन गए। ये बॉडी के फ्लैश एंड बोन और आपका जहन यानी कि माइंड, सॉरी पहले ब्रेन, ग्रे मैटर जो है, ये सब रंगों से काम करते हैं। अगर आप मुआफिक रंग आपको मिलता रहेगा तो आपका बिहेवियर हेल्दी होगा, हाँ या नहीं? अब अगर ऐसा रंग प्रोवाइड करेंगे जो ऑलरेडी ज्यादा है या जिसकी जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। यहां से लोगों ने पत्थरों को साद और नहस कहना शुरू कर दिया। ये वो बात का बढ़ाना हो गया। बात बढ़ाने के बजाय हकीकत में देखें तो कितना ही सी बात है कि भाई एक चीज को ओवरडू करेंगे तो नुकसान होगा, कमी करेंगे तो भी नुकसान होगा। तो कमी को पूरा किया जाता है, ज्यादती को रोका जाता है। तो बाज लोगों को बाज पत्थरों के रंग जो उनके मवाफिक हों, मवाफिक यानी जिसकी उसको सचमुच जरूरत है। ठीक है, अब एक बंदे का बीपी लो रहता है, उसको अगर आप सुर्ख रंग का वो पत्थर पहनेगा तो उसकी तबीयत ठीक रहेगी। अब एक बंदे को गुस्सा आता है, अगर वो फिरोजा पहनेगा तो फिरोजे का रंग ग्रीनिश होता है, वो उसको सूद करेगा। क्या हुआ? अब आपको समझ आ गया कि ये असल कहानी के पीछे पूरी क्रोमोपैथी छुपी हुई है।
जी सर, जी सर, समझ आ गया बिल्कुल।
क्लियर हो गया कि ये जो है, ये दर हकीकत हमारे तवाहमात, ये आगे हिंदुओं ने, वो हिंदुआना निजामे फिकर है ना, कि मादी चीजों को प्रायोरिटाइज किया हुआ है उन्होंने। लिहाजा जी, ये हीरा है तो ये नीलम है तो ये याकूत है तो ये फलां है, ये पुखराज है तो ये एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी आप नाम जानते हैं वो ذہن میں دوہرا لیں. ٹھیک ہو گیا؟ کہانی اتنی سی ہے کہ کون سے رنگ کی شعائیں اس پتھر سے منعکس ہو رہی ہیں اور وہ شعائیں آپ کے کام آ سکتی ہیں یا وہ اضافہ کر رہی ہیں. اگر تو کام آ رہی ہیں تو وہ موافق کہلا رہا ہے, کام نہیں آ رہی تو نقصان کا سبب بنیں گی. لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا, علم بجائے اس طرح سیدھی سی سائنس بتاتے وہ علم جوتش آ گیا, تو تاریخ پیدائش آ گئی, تو نام کے حروف آ گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ کھلواڑ. کیا کہا میں نے, اس سے کیا بنا, سارا یہ کھچڑی پکا کے چورن بیچ رہے ہیں. اب سمجھ آ گیا چورن کیسے کہتے ہیں. جی تو یہ سوال واضح ہو گیا.
بالکل سر, تھینک یو سو مچ.
اٹس این آنر فار می, آئی ایم گریٹفل ٹو یو فار آسکنگ سچ کوشچنس وچ ریئلی ریکوائر کلیریفیکیشن. ٹھیک ہے نا, سو دیٹ وی کوڈ ہیو دی کلیئرٹی آف آر کانسیپٹ.
تھینک یو سر, تھینک یو, آپ کو اتنے اچھے سے ایکسپلین کرنے کے لیے, کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے.
اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. جی نیکسٹ.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو فطرت ہم بولتے ہیں, فطرت کو سر اگر بناوٹ ہے تو ہم اسے کیسے سمجھیں, اور فطرت سے جو ہم آہنگ ہونا ہے وہ پھر کیسے پاسبل ہوگا سر؟ کیونکہ بیسکلی پہلے فطرت
پہلے تو یہ ہم آہنگ کو سمجھ لیں.
جی سر,
آپ ایک کوٹ پہنے اور کوٹ آپ کے بدن سے مناسبت نہ رکھتا ہو, فرض کریں.
جی
سر. وہ کسی 6-6.5 فٹ کے موٹے سے انسان کے لیے ہو اور آپ پہن لیں.
جی سر.
کیا لگے گا کہ تمبو میں گھس گئی ہیں. آڈ لگے گا کہ نہیں؟
بالکل لگے گا.
اب اگر آپ اپنی بیٹی کا کوٹ پہننے کی کوشش کریں تو کیا آپ اس میں فٹ ہو جائیں گی؟ تو یہ ہم آہنگ ہونا سمجھ آ رہے ہیں. دیکھیں وہ جو 6 فٹ کا کوٹ ہے, 6 فٹ کے قد والے بندے کے لیے جو بنا ہوا کوٹ ہے وہ اس کے لیے ہم آہنگ ہے, یعنی اس کے ساتھ وہ پروپورشنیٹ ہے, اس پہ اچھا بھی لگ رہا ہے. لیکن اگر میں وہ کوٹ پہننے کی کوشش کروں گا تو میں کیسا دکھوں گا؟
جی سر.
مطلب ہے کہ ظاہر ہے اس کے بازو میرے ہاتھوں سے باہر تک پھیلے ہوں, اس کی آستین جو ہے اس میں میرے ہاتھ ہی چھپے ہوئے ہوں, باقی کندھے جو ہیں وہ نیچے کونی تک آئے ہوں, تو ذرا امیجن کریں نا کہ وہ کیسا لگوں گا میں.
جی سر.
تو آئی ہیو ٹو ایڈجسٹ. یہ ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں ہم آہنگی کو.
اوکے سر.
اب یہ لفظ ہم آہنگ, ہم میں نے ایک جیسا, آہنگ کہتے ہیں آواز کو. آرکیسٹرا میں آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں نا, سر سے سر ملتا ہے تو تال بنتی ہے, تال سے تال ملا کہ سر نکلے, یا سر سے سر ملا کے تال بنے.
جی.
یہ ہم آہنگی ہوگی تو وہ میوزک کہلائے گا, ادر وائز اٹ از اے نوائز. اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ بناوٹ کیا چیز ہے؟
جی,
اللہ نے ایک نظام آپ کے لیے ترتیب دیا ہے, تخلیق کیا ہے, تخلیق کیا اور پھر اس کو ایک ترتیب دی ہے, پھر آپ کے ذہن کو کہا کہ بھی اس لباس کو پہن لو. अब अगर आप उसे इस तरह पहने के वो टेलर मेड लगे, हा 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 हा, तो आप क्या हुआ, सज गए। वही निजाम आपने इस तरह पहना, इस तरह अपनाया कि कहीं बाजू छुपा हुआ है, कहीं बाजू आस्तीन ऊपर कोनी तक ही पहुंची है।
जी सर।
तो हम महंगी होगी ये मिसाल समझ में आई? ये मिसाल देख, कसम से मैं खुद मतलब झूम उठाऊं के अल्लाह ने क्या मिसाल सुझा दी।
बेशक सर, बेशक सर।
देखे ना, ये हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने। अब फितरत का मतलब है बनावट। अब कुदरत ने हर बंदे के लिए एक बनावट बनाई है। एक बनावट इंसान ने अपनी खुद बनाई है, जिसको हजूर कलंदर बाबा वालिया ने बनवा कहा है। वो बनवा अल्लाह की बनावट में फिट नहीं बैठ रहा। यानी अब आप ये कहिए कि अल्लाह ने तो आपका जिस्म बनाया, आपने जो लिबास अपनाया हुआ है वो फिट नहीं है, या ढीला है या टाइट है। देखे ना, अगर मैं अपने से किसी छोटे बदन के बंदे के कपड़े पहनूंगा तो कैसा ऑड दिखेगा। अब उसकी आस्तीन मेरी कलाई के बजाय मेरी कोहनी के करीब होगी, तो आप देखते ही कहेंगे कि क्या छोटे भाई के कपड़े पहन कर आ गए। ये जुमले हम सुनते हैं ना। यही बातें निजाम फिक्र पे भी लागू होती हैं। अब वो जुमला याद कीजिए जो मकसूद साहब कहते हैं, पूरे कुरान का खलासा तीन जुमलों में, अपने फराइज में इन्हामाक, शूटिंग दी प्रॉब्लम, हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन, और तीसरा जुमला क्या होता है, एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट का लफ्ज जो है यहाँ पे हम महंगी के साथ क्लियर हो गया।
yes, sir. जी।
मैंने लफ्ज का जो लघवी मतलब है कि हम आहंग होना, यानी आहंग का एक जैसा होना, एक ही सुर में अगर आवाजें होंगी, हारमोनियम और तबला और सारंगी और वो बिगल, वो क्या होता है, वो जो माउथ आर्गन है, वो सारे अगर एक ही पिच पे एक ही सुर पे चल रहे होंगे तो वो नगमा कहलाएगा,
जी,
वरना शोर कहलाएगा। बस
बिल्कुल,
हमने अपनी आवाज को फितरत के साथ हम आहंग करना है, अपने जहन को फितरत के साथ हम आहंग करना है। जो गलती हम करते हैं वो ये कि हम फितरत को अपने साथ हम आहंग करना चाहते हैं। यानी हम उल्टी गंगा बहाते हैं। और जो गंगा बहाते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो गंगा स्नान करते हैं उनको क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं सर?
जी आप लोग बताएं।
पंडित कहते हैं सर, वो तो
जाहिर है कि उनको हिंदू कहते हैं।
जी सर।
सिर्फ पंडित तो नहीं नहाते हैं, सारे हिंदू नहाते हैं।
वो तो सभी नहाते हैं। जी सर, जी सर।
देखे ना, अब पानी में नहाना, ये तो सारी दुनिया नहाती है, नहरों में दरियाओं में लोग तैरते हैं, नहाते हैं, लेकिन वो इसको एक रिचुअलाइज फॉर्म बना के करते हैं, लिहाजा ये उनका अकीदा हो गया।
जी जी सर।
और अकीदे का तो तोड़ कोई नहीं है।
जी जी सर। सर एक सवाल कर सकते हैं आप?
जी जी फरमाइए
सर। ये अब्बा हुजूर की आगही में अब्बा ने बात फरमाई है कि जो हम बाहर देख रहे हैं वो मफरूजा है, और वो जो बच्चे उनको हम करवाते हैं वो अपने इनर में होता है लेकिन हम उसको बाहर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो सर ये चीज हम सही कैसे कर सकते हैं सर? बच्चों को तरबियत किस तरह से करें कि वो हम उन्हें बाहर ना दिखाएं, उन्हें अंदर ही देखने में उनकी हेल्प करें?
बहुत सिंपल बात बताऊं आपको?
जी सर।
एक लफ्ज में?
जी सर।
मुदाखलत करना बंद कर दें।
मुदाखलत बंद कर कैसे सर? अगर मतलब बच्चों की अगर तरबियत करनी है
जी
तो उन्हें किसी चीज पर रोकना भी पड़ेगा और कोई चीज
बिल्कुल
भी पड़ेगी सर?
जी लेकिन मुदाखलत और चीज है, शऊर और आगही देना दूसरी चीज है। गौर करें जरा, अब्बा हजूर क्या हमारी जिंदगियों में मुदाखलत करते हैं?
नो सर, कभी नहीं।
तरबियत कर रहे हैं कि नहीं? तो आप जब मुर्शिदे करीम की तर्ज फिक्र अपना रहे हैं तो आप ये एटीट्यूड क्यों नहीं इख्तियार करते? देखें बच्चा अगर हल देखें, मैंने एक जुमला कहा था कि बुरा नहीं लगना चाहिए।
यस सर, बिल्कुल।
और उस पे किसी ने आगे से बड़ा मुंह फाड़ के कहा तो क्या मतलब है कि जो गलत हो रहा है हम उसको गलत होने दें? तो मैंने अर्ज किया कि नहीं, आप मेरी बात सुनने में जरा ताजील का शिकार हो गए, उजलत का। इन्नल इंसान अजूला। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि भाई बुरा नहीं लगना चाहिए, आप गलत को गलत देखें और उसकी इसलाह करें।
जी जी सर।
मसलन हजूर मुर्शिदे करीम को लोग बाज ऐसे नागवार सवाल पूछते हैं कि मकसूद साहब जो साथ बैठे होते हैं या पास जो लोग बैठे होते हैं उनको बुरा लगता है, उनको गुस्सा आ जाता है।
जी सर।
लेकिन हजूर मुर्शिदे करीम के चेहरे से मुस्कान ही नहीं हटती।
ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा है।
तो ये एटीट्यूड हम क्यों नहीं सीखते? देखें वो गलत को गलत देख रहे हैं और उसकी सलाह फरमा देते हैं, कह देते हैं भाई आपने ये गलत किया। मसलन एक साहब गए कि जी वो मेरी बीवी बच्चों को लेके घर से सामान लेके फरार हो गई।
अच्छा।
तो हजूर मुर्शिदे करीम ने उनसे कहा कि असल में आप रोक टोक बहुत करते थे ना, आप खोज में रहते थे फालतू की, इसलिए ऐसा हुआ। अब देखे एक जुमले में उन्होंने उसको पूरा उसके सारे वो बता दिए। ठीक है। अब वो या तो ये कि वो सुन लेता और अपनी इसलाह करने पे तुल जाता,
जी सर।
आगे से उसने जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी। हजूर मुर्शिदे करीम मुस्कुरा दिए, चलें कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा, कह के उन्होंने बात टाल दी कि भाई एक बंदा बात ही नहीं सुन रहा, क्या करूं मैं। अब्बा से एक दफा मकसूद साहब ने पूछा कि जी ये दुनिया में ये जो सारा गंद बना हुआ है इसका क्या हल है? हैं? मैं इल्मी तौर पे हल पूछ रहा था ना।
जी सर।
मैं तो अब्बा ने कहा ये सारा खिलवाड़ ये खेल जो है ये सारा मुदाखलत का है। अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क की के मामलात में मुदाखलत ना करे तो सब अमन सुकून हो जाएगा।
जी सर, ऐसा
है। आधे जुमले में देखें मुआशरे के हर टियर पे अगर माँ बाप बच्चों के मामलात में मुदाखलत बंद कर दें, मियां बीवी के मामलात में मुदाखलत बंद कर दें, बीवी मियां के मामलात में मुदाखलत बंद कर दे,
जी सर।
दोस्त एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करें, एक मुल्क दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत ना करे, देखें एक लफ्ज, और यहाँ पे क्या था कि जी वो आ गया तो मुदाखलत हुई है तो साजिश नहीं हुई, तो साजिश हुई है तो मुदाखलत नहीं हुई है? क्या ड्रामे हैं? सारा चक्कर मुदाखलत का। जो माँ बाप बच्चों के मामलात में जरूरत से ज्यादा मुदाखलत करते हैं, दखील रहते हैं, बच्चे रिएक्ट करते हैं। अगर माँ बाप मुदाखलत करने के बजाय उनकी तरबियत के लिए वो बात कहें कि बेटे घर को जन्नत बनाना है, क्या कहें? ये टारगेट उसको दे दें कि भाई वी हैव टू मेक आवर होम अ पैराडाइज। घर में किलकिल नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी करो।
बिल्कुल सही हो गया।
अब देखें ना मकसद क्या है, आप मुदाखलत इसलिए कर रहे थे कि सुकून हो, अमन हो, शांति हो, चैन हो। तो मैंने अर्ज किया कि भी उसका यह तरीका भी तो हो सकता है कि आप मुदाखलत किए बगैर उनको डायरेक्ट अप्रोच करें कि बेटे घर में शोर नहीं करना, बात करो, प्यार से करो, तहमल से करो। तुम गैरों से कितने इखलाक से बात करते हो, अपनों से, अपने तो उससे ज्यादा इखलाक डिजर्व करते हैं। मुझे बताएं दोनों सूरतों में मोटो तो एक ही है कि अच्छा बिहेव हो, घर का माहौल पुरसकून हो, हाँ या नहीं? लेकिन अगर आप गलत तरीके से माहौल को दुरुस्त करना चाहेंगे, जबरदस्ती दुरुस्त करना चाहेंगे, तो जबर की दस्ती जो है वो खड़े आएगी कि नहीं?
बिल्कुल आएगी
सर, बिल्कुल। तो बेहतर नहीं है क्या जेर ही लगा लें? जबरदस्ती के बजाय जेर दस्ती पे कायल हो जाए।
बिल्कुल सही हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसमें इसी में अब्बा हुजूर का एक आगे एक जुमला था कि जो हम बाहर देख रहे हैं मफरूजे के अलावा कुछ नहीं, और ये मफरूजा आदम की औलाद को जबरी तौर पर इसनाफ से मुंतकिल हुआ। सर यहाँ पे ये जो आदम की औलाद को जबरी तौर पर हुआ, तो सर क्या आदम के अंदर ये चीज नहीं थी, वो औलाद में फिर कैसे आई?
आहा, आदम की चीज दो चीजें थी ना, एक फितरत थी एक जबिल्लत थी।
जी सर।
अब आदम ने फितरत के बजाय जबिल्लत मुंतकिल कर दी। अब आपको देखा फर्क ही नहीं पता किसी को कि फितरत और जिबिल्लत का क्या फर्क है, तो हमने छोटी छोटी मिसालें दी।
जी सर।
अब जब आप हजूर मुर्शिदे करीम का ये जुमला पढ़ रहे हैं तो देखें जरा उनके विजन की गहराई।
जी बिल्कुल सर।
कि आदम से फितरी तौर पे चीजें जो मुंतकिल हुई वो तो होनी थी, लेकिन आदम के से जबिल्लत का जो इंतकाल हुआ वो गलत हुआ।
सही।
बारीकी देखें जरा।
बिल्कुल सर।
कितना शऊर है उनको और वो हम में पैदा करना चाह रहे हैं, तभी तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
कि जिबिल्ली तौर पे जो चीजें मुंतकिल हुई, अब गुस्सा करना जिबिल्लत है, फितरत है। अब हाबील और काबील में जो लड़ाई हुई ये जिबिल्लत थी क्या फितरत थी?
जिबिल्लत थी सर, बिल्कुल।
आज तक ऊपर जो भाई कत्ल हुआ वो एक हाल में है, जिसने किया वो अपने पछतावे में है आज तक।
जी सर।
क्या मतलब हुआ कि ये काम जो यहां रिकॉर्ड हो गया वो वहां परमानेंट है,
परमानेंट है बिल्कुल।
जो तर्ज़े फिकर यहां बन गई।
जी सर।
अब ये शऊर किसने पैदा करना है कि फितरत पे चलना चाहिए? मैं क्या कहता हूँ कि फितरत से हम आहंग होना है।
जी सर।
कभी कहा कि अपनी जबिल्लत इम्प्रूव करें?
नो सर, नो सर, कभी नहीं।
जिबिलत को आपको इग्नोर करना है, वरना अल्लाह ने तो उसको रेजा रेजा कर ही देने अलकारिया ते मलकारिया
है
और ये बाले कल हिन्निल मनफूश साफ तो कहा धुनकी हुई ऊन की तरह क्या किया जाएगा, धुन दिया जाएगा उनको।
जी सर, जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर,
ये
दो तीन सवाल
थे
सर, थैंक यू सो
मच। आई एम ग्रेटफुल जी, थैंक्स टू यू।
अस्सलाम वालेकुम
सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर एक लफ्ज बहुत हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, मकाफाते अमल। ये मकाफाते अमल की डेफिनेशन भी और क्या कहते हैं इसकी मीनिंग भी पूछना चाह रहे
हैं। मीनिंग बता देता हूँ, डेफिनेशन तो आप खुद कर लीजिएगा।
जी जी बताइए।
अमल का नतीजा, अमल का नतीजा। मैंने अर्ज किया ना, मैंने अर्ज किया कि भाई अमल का नतीजा मकाफात अमल कहलाता
है। ये तो समझ में आता है।
जब आप जहर खाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा?
सही है सर, लेकिन लोग तो तंजिया इस्तेमाल करते हैं ना कि
ओ भाई, तो लोगों की बात सुन लो या बात को समझ लो। आप तय करेंगे ना कि लोगों की बात सुनेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, परेशानी, तो ये मकाफाते अमल हो गया। भाई देखे ना, अब लोग कहते हैं कि भी मकसूद साहब जो है ये गलत कर रहे हैं। अगर मैंने असर लिया तो उनकी बात का मकाफाते अमल क्या हुआ, तो मैं परेशान हुआ। मेरी परेशानी उनके अमल का नतीजा हुई या नहीं हुई?
उनके अमल का नतीजा।
मैंने उस अमल को अपना लिया, मैंने उस अमल को एक्सेप्ट किया ना, तो भुगतेगा कौन?
हमें भुगते
जिसने अपनाया। अब देखें ना, आप मुझे फर्ज करें, आपने कोई बुरा कहा, मैंने उसका असर लिया, तो परेशान मैं हुआ कि आप हुए?
लोग तो जज़ा और सज़ा की तरफ ले जाते हैं ना इसको, लोग तो
मेरी
जज़ा और सज़ा की तरफ ले जाते हैं।
आपने मेरी अर्ज समाअत फरमाई, लफ्ज लोगों को माइनस कर दें आप, लफ्ज फिर नहीं, आपने कहाँ कर दिया, आप उसका तस्करा कर रहे हैं, माइनस कहाँ हुआ? वो जो चीज माइनस हो गई, जो चीज माइनस हो गई उसका तस्करा हो सकता है? जो चीज माइनस हो गई, जब मैंने अर्ज किया कि लोगों की बातों को माइनस कर दें, तो लोगों का तस्करा कहां से आ गया?
दूसरा क्वेश्चन
इस वक्त ये आयत मेरे सामने नहीं है, अगर आप कहें तो मैं, मुझे नंबर बताएं आयत का, सूरत का नंबर, तो मैं कुरान खोल के देख लेता।
सूरह हदीद में आयत नंबर मुझे इस वक्त याद नहीं है,
यूरीद का मतलब तो इरादा करना हुआ। मैं ऐसे है कि आप ये किसी वक्त, जी मैं अर्ज करता हूँ, देखें बड़ा सिंपल है, आप ये आयत का नंबर या ढूंढ के ना तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें, ठीक है, तो उस पे हम बात कर लेंगे, ठीक हो गया?
जी जी।
क्योंकि इस वक्त मेरे सामने नहीं है ना, तो मैं इस वक्त मैंने आपको युरीद का मतलब अर्ज कर दिया, इरादा करना। मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को, मुराद कहते हैं जिसका इरादा किया जाए। तो अल्लाह क्या कह रहे आप इस लफ्ज युरीद का तर्जमा वहां रख के पढ़ लें तो समझ आ जाएगा। जी जी अर्ज ये है कि मैंने अर्ज किया आपसे कि इस पे आप मुझसे आयत का नंबर फरमा के ना कॉल पे बात कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम इसको थ्रैश आउट कर लेंगे। ठीक हो गया, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हम पे प्लीज, अल्लाह रहम करे। बात यह है कि ये तशीह और अहले सुन्नत की डेफिनेशन कहां से आई? हजूर अलैहिस्सलाम अहले तशीह थे कि अहले सुन्नत थे? ये डेफिनेशन बाद में आई कि पहले से थी?
बाद में आई।
आई एम सो ग्रेटफुल। बात आपको समझ आ रही है? हमें जड़ को पकड़ना है, शाखों को नहीं तराशना। भाई शाखों को नहीं तराशना, मैं क्या कह रहा हूं कि बात को समझना है। अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह रब्बे करीम क्या फरमा रहे हैं? वो आपके घर वालों की बात कर रहे हैं, वो आपके घर वालों की बात कर रहे हैं, या कि आप जबरदस्ती उनको सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम के घर वालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं?
हुजूर के घर वालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना,
ये तो आप कर रहे हैं ना। अल्लाह किसको कह रहे हैं? जब मैं और आप पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे अर्ज किया कि आप इस पे अलग से बात कर लीजिए प्लीज, आपको प्लीज जी। और कोई सवाल? मुझे बुरा नहीं लगता, मैं इन चीजों से गुजरा हुआ बंदा हूँ और जल्दी दुनिया से गुजर जाऊंगा। बात यह जब मैं इन चीजों से गुजर गया, बात यह जब मैं इन चीजों से गुजर गया, बुरा लगने की मैं खुद ममानियत करता हूँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई? बात आपने की, मैंने चूंकि देखें कुछ हिफ्ज़े मरातब होते हैं, कुछ आदाबे मजलस होते हैं, मैंने कहा कि ये बात अगर आप समझने समझाने के लिए पूछ रहे हैं तो उसका मैंने अर्ज किया कि आप बात कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसकी कुरान को सामने रख के वहां पे पढ़ते हुए बात करूंगा तो इंशाल्लाह वजाहत हो जाएगी।
थैंक यू सर, थैंक यू,
टेक केयर। नेक्स्ट, जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर ये एक लफ्ज़ ज़हन में आ रहा था, जान पहचान। सर इससे जो है एक सवाल ज़हन में आया कि जान पहचान से क्या मुराद है, और अल्लाह से जान पहचान जो है उसका तरीके का क्या हो सकता है, या कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है
इसमें लफ्ज जान आया है लिहाजा जान कह के पहचानना जो है ना वही असल जान पहचान।
जी सर यही दो, ये लफ्ज को दो करके ऐसे ही सोच रही थी कि जान और पहचान।
देखे ना जब आप किसी को कहते हैं
जी सर
कि देखो मेरी बात सुनो मेरी जान, बड़ी अपनाइयत का इजहार कर रहे हैं, तो जान का क्या मतलब हुआ? यानी अपनाइयत वाली पहचान। जब आप अल्लाह को अपना मानेंगे क्या?
अपना मानेंगे।
आए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तो मेरी जान है।
बिल्कुल है।
अब जब आप अल्लाह को जान ही नहीं मानेंगे तो पहचानेंगे क्या?
हाँ जी सर। सर क्या करें सर?
कुछ ना करें, अल्लाह को जानू कहना सीख लो। आसान हो गया ना, इसमें जान भी आ गया और पहचान भी आ गया। लेकिन हम अल्लाह के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करना गुस्ताखी समझते हैं। नतीजा हम गुस्ताखी के मर्तकब हो रहे हैं, और इर्तकाब गुस्ताखी जो है वो जाहिर है कि प्यार तो करने नहीं देता। जब आपके अंदर ये जज्बा इस शिद्दत का पैदा हो जाएगा कि आप अल्लाह को अपनी जान करार दे देंगे, अल्लाह क्या कह रहा है? नहनो अकरबो अलैहे मिन हबलिल वरीद। अल्लाह कह रहा है कि मैं ही तो तुम्हारी असल जान हूँ, तुम किसको जानू कह रहे हो? आप अल्लाह को इस तरह से जानू मानो तो सही।
हाँ जी सर।
देखें हम अल्लाह की महबूब तरीन मखलूक
है,
इतनी महबूब के आपकी शान में शैतान ने एक लफ्ज गलत बोला। क्या कहा उसने? खैरो मिन हो, मैं इनसे इससे अफजल हूं। अल्लाह रब्बे करीम को कितना नागवार गुजरा कि उसको मर्दूद करार दे दिया। तेरी ये मजाल कि तू मेरे महबूब को से खुद को बेहतर समझे, और करें पर हमें अशऊर ही नहीं है कि हम अल्लाह की कितनी महबूब मखलूक हैं। यहां से सूफिया कराम ने जो गड़बड़ मचाई वो अल्लाह के आशिक बनने के चक्कर में डाल दिया कौम को। नहीं भाई, हम अल्लाह के महबूब हैं, क्योंकि हम महबूबे किबरिया की उम्मत हैं। हज़रत-ए-सात-ओ-सलाम का लकब महबूबे किबरिया है या नहीं?
जी बिल्कुल है।
हम किसकी उम्मत है? महबूबे किबरिया की।
महबूबे किबरिया
की सबसे बड़े महबूब की उम्मत है, तो हमें महबूब होना चाहिए कि नहीं? अब सूरा आले इमरान की आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बे करीम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम से क्या कहलवा रहे हैं? कुल, इन्हें कह दीजिए, इन कुन तुम तो हिबून अल्लाह, इन्हें अल्लाह चाहिए। फत्ता बेउनी, मेरे जैसे बन जाओ। यहबिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमको प्यार करेगा, तुम भी अल्लाह के महबूब बन जाओगे। यहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको प्यार करेगा। हमने तर्जमा किया, नहीं करेगा नहीं, करता है। हमें एहसास नहीं है। बज़ाहिर ये आज एक बड़े लाइटर वेन में मैंने कह दिया कि आप अल्लाह को जानू बोलना तो सीखो, जान पहचान है, आप उसको अपनी जान मानो तो सही। यहाँ हर ऐरा गैरा नथु खैरा जो है वो जानू बनने के चक्कर में है या जानम बनने के चक्कर में। ठीक हो गया
जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया,
अल्हम्दुलिल्लाह।
थैंक यू सो मच सर।
इरशाद जी, कोई नहीं जी। जी जी
सर, नजीर क्या है? डर सुनाने वाला?
गलत।
फिर क्या हुआ सर नजीर?
ये आप नजर न्याज जो देते हैं इसमें भी तो नजर आता है, तो यहाँ पे आप डर खौफ क्यों नहीं लेते?
सर ये वाली बात भी है।
हम्म, वहां तो आप बड़ी नजर न्याज अदा कर रहे होते हैं, तो नजीर क्या हुआ? नजर देने वाला। नजर का नून जाल रे
जी।
हाँ या नहीं? एक नजीर होता है नून जोए ये रे,
वो बेनजीर वो वाला, वो
नजीर नजर से है, वो नजीर नजर नून जोए और रे नजर यानी निगाह। यहां पे नजर या नजीर नून जाल ये रे नजर कहते, हम कहते हैं नजर न्याज। देखें नजर असल में कहते हैं, अल्लाह कहते हैं कि नजीर यानी वार्निंग देना, इत्तला देना। वार्न करना क्या होता है? इत्तला दी जाती है क्या कि इफ यू विल डू रॉन्ग अ रॉन्ग विल हैपन टू यू, मकाफाते अमल। अगर आपका अमल गलत होगा तो नतीजा गलत होगा, इस चीज की इत्तला देने वाले को नजीर कहते हैं। इसी से लफ्ज है कि भाई तुम इन्हें यानी कि डराओ या ना डराओ, हमने तर्जमा ये किया हुआ है। तुनजरून करके लफ्ज आता है, माफी चाहता हूँ आयत भूल गया।
तुनजरून, लेकिन सर तुनजरून वो अलग है सर, वो ज़ुआद वाला आ गया फिर।
दोबारा चेक करें।
अच्छा अच्छा सही है, ठीक है सर। अच्छा सर, इस वाले नजीर का मतलब क्या होगा? वार्न करने वाला
जी, मतलब इत्तला देने वाला, इत्तला देना, आपको पॉजिटिव नेगेटिव की इत्तला देने वाला कि भाई अगर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। इसको वार्नर कहा, अंग्रेजी में तर्जमा किया वार्नर, नजीर का तर्जमा किया वार्निंग देने वाला। अब सड़क पे आप जाते हैं वार्निंग साइन लगा होता है, आगे बेंड है, आगे मोड़ आ रहा है, आगे पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, एहतियात से चलो। ये तंबी, ये वार्निंग जो है ये असल में क्या इत्तला है ना
जी। सर आज आपने बशर का भी बड़ा अच्छा तर्जुमा बताया।
नहीं मैंने तर्जुमा नहीं बताया, मैंने आपको एक दोस्त की कोटेशन सुनाई कि देखें वो जुमले को सिर्फ जबान की ट्विस्ट से अच्छे भले। अब बशर का मतलब है जिसको बशारत मिलती हो,
खुशखबरी है सर ना
जी। बशीर का मतलब खबर देने वाला, बशर जो खबर रखता है।
अच्छा,
बशर से बशारत लफ्ज है ना
जी।
अब खबर रखने वाले को बशर कहते हैं, लेकिन वो शरारत से उन्होंने दूसरी तरह बोल दिया तो वो हमने एंजॉय कर लिया जी। और कोई सवाल?
सर बस मेरा तो भी यही था
जी।
अस्सलाम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर ये एक जुमला पढ़ा था उसी में से सवाल है। राय सलूक के मुसादे में दरवेश से पूछा, मुरादे में ये सुई क्यों नहीं होती? उन्होंने फरमाया, मोहब्बत की कमी है, जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है इतनी ज्यादा सुई होती है। सर मोहब्बत की कमी को कैसे दूर किया?
मोहब्बत करके
मोहब्बत करके
नहीं, इसका मतलब है साफ तो लिखा है, जो आपने पढ़ा उसमें साफ तो बताया मोहब्बत की कमी। देखें जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मुहिब कौन होता है? जिस पे आपका जहन फोकस करे, इस फोकसिंग का नाम है मोहब्बत। क्या अल्लाह ने कहा, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, हमने तर्जमा किया अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो हुब कहते हैं फोकसिंग को। ये मेरा तर्जमा है, माफी चाहता हूँ। देखे ना मुहिब कौन होता है? जिस पे आपकी फोकस हो, आपकी फोकसिंग दुनिया है।
जी सर।
हमारी और आपकी फोकसिंग कहाँ है? दुनिया
है।
हजूर कलंदर बाबा वाले ने कहा कि अपने इनर में फोकस करो।
जी।
मुझे बताएं पूरी लौह कलम में कहाँ कहा कि अल्लाह पे फोकस करो? उन्होंने कहा अपने इनर में फोकस करना सीखो। हम जब अपने इनर में फोकस करना सीखेंगे तो अपनी कैफियत को समझेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा पंगा क्या आता है कि जो मुआशरती अकायद हैं उन्होंने हमारे रास्ते में ऐसी रुकावटें खड़ी की हैं कि हम अपने इनर में नहीं उतर पा रहे। हजूर मुर्शिदे करीम का एक जुमला आपने पिछले उसमें समात फरमाया कि जमानियत क्या है? शऊर और लाशऊर की दस्तावेज है, दस्तावेजी फिल्म है। लाशऊर गैब में मौजूद मजहर का नाम है और शऊर उसका वकूफ है, यानी बातनी कैफियत का मुशाहिदा। देखें हम अपने बातिन ही की तरफ तो मतवज्जो नहीं है। बातिन में फोकसिंग का दूसरा नाम है मोहब्बत। मेरा ख्याल है काफी है इतनी बात, बाकी समझना आपने, समझाना अल्लाह ने। आप इस जुमले पे फोकस करें जो मुर्शिदे करीम का जुमला है, बातनी कैफियत का मुशाहिदा करने में जुट जाएं। बताइए किसका भला करेंगे आप?
अपना ही करेंगे।
अल्लाह करे के कर ही लें। जी जी पहले आप कर लें फिर। जी जी जी
कौन? आप उनसे कह रहे हैं?
आपसे कह रहा हूँ।
अच्छा सर, तवक्का और तवक्कुल में क्या फर्क?
तवक्को रखना ही तवक्कल है। किसान मुट्ठी भरता है गंदम से, गंदम के दानों से, और यूं करके फेंकता है मट्टी में। उसको तवक्को है कि ये उगेंगे। ये तवक्को चूंकि अल्लाह से है लिहाजा तवक्कल कहला रही है। फर्क समझ आ गया?
जी सर।
इस्तगना ये है कि अल्लाह चाहे करे चाहे ना करे, यानी आपने तवक्को ही तोड़ दी। तवक्कोआत नहीं रखनी। अब अल्लाह पे भरोसा करना तवक्कल है, और अल्लाह पे छोड़ देना इस्तगना है। फर्क समझ आ गया?
जी सर।
अल्लाह करे के समझ आ जाए।
जी सर।
आप क्या कह रहे थे? दूसरा वो क्या, कौन बोल रहा था? जी वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसा लग रहा हूँ? असल में रिस्क कहते हैं वसाइल की फराहमी को। वसाइल की फराहमी में चूंकि हमारा मादी शऊर महज खाने पीने की चीजों को रिस्क समझता है, वसाइल तकाजों की तकमील के लिए जितने भी वसाइल फराहम हो रहे हैं वो सब रिस्क है। आपको वक्त पे जवाब सूझ गया तो ये भी रिस्क है। हजूर मुर्शिद करीम का एक जुमला सुन लें, रिस्क की वजाहत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि खामन जो है बीवी के लिए रिस्क का सामान रख कर मतलब मुकाम रखता है। क्या मतलब हुआ? उसके तकाजों की तकमील करता है ना।
जी
वाजी हो गई बात।
और सर इसमें जो कहते हैं कि भाई रिस्क की कमी है वगैरह वगैरह जुमले,
वो तो हमारे हमारी महदूदियत हमारी महदूद सोचों के कमालात हैं। अल्लाह ने जब खुद को राजक कह दिया, अल्लाह ने खुद को रज़ाक कह दिया, तो वसाइल की फराहमी वाली जात का नाम रब रख दिया। तो मुझे बताइए कि रिज़्क के बारे में परेशान होना अल्लाह की रबूबियत का इनकार ना हुआ?
बिल्कुल हुआ, बिल्कुल।
तो बाज आ जाओ ना जान।
सर मैं तो बाज आई
हूँ। बस आप बाज आ गए तो सारी दुनिया बाज आ गई, समझे? ठीक हो गया बात? वाजे हो गई कि नहीं? अल्लाह ने खुद को राजक भी कहा है और रज़ाक भी कहा है, हाँ या नहीं? तकाजे भी अल्लाह ने दिए और उनकी तकमील के वसाइल भी अल्लाह फराहम कर रहा है। तकाजों की तकमील के वसाइल का नाम रिज़्क है। Am I very clear?
Yes, sir.
You should be saying absolutely yes.
Absolutely yes, sir.
उसने तो absolutely not कहा था और मारा गया।
सर एक सवाल है अभी इस तकमील से मुतालिक।
इरशाद।
अभी आपने कहा सर इस्तगना खाली उस ज़हनी का नाम है, अगर
अल्लाह पे छोड़ देना क्या हुआ? अल्लाह पे छोड़ देना क्या हुआ? अल्लाह चाहे करे चाहे ना करे, तो आप खाली उस ज़हन हो गए कि नहीं हो गए?
सर आखिर में जो है वो अल्लाह ताला इस रिस्क का हिसाब लेगा, वो कौन सा रिस्क है जिसका हिसाब हमें देना पड़ेगा?
ये कहाँ लिखा है रिस्क का हिसाब लेगा अल्लाह? ये थोड़े ही पूछेगा कि क्या खाया क्या नहीं खाया। नहीं
सर बात
भाई कहते हैं ना, ओ भाई मैं कह रहा हूँ कि आपके कहने की बात को एक तरफ रख दें, अल्लाह के इरशाद की बात करें। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? आंसर इज नो, अल्लाह ने कहीं नहीं है। देखें, रिस्क आपके तकाजे किसने दिए? आपको तकाजे किसने दिए? ये किसने कहा? भाई किसने कहा? भाई जुमला इस्तेमाल होना एक बात है, जो बात अल्लाह ने कही है उस पे आए ना। अल्लाह रब्बे करीम ने आपको नताइज से आगाह किया, अल्लाह रब्बे करीम ने कहा कि ये चीज गलत है, इसको इस्तेमाल मत करो, ये चीज जायज है, ये फायदा मंद है, इसको इस्तेमाल करो। अल्लाह ने तो ये कहा। आगे ये जो बाकी जुमले हैं, ये रिवायात हैं, घड़ी हुई बातें हैं, हमारे जहनों को शिकंजों में गढ़ने की बातें हैं, हमारे जहनों को शिकंजों में गढ़ने की। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। ये बात देखें, सीधी सी बात है, रिश्वत का क्या मतलब है? अब देखें कहां की बात को, देखें आप नुक्ता बदल देते हैं। मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, आप उस बात को समझने के बजाय दूसरा नुक्ता उठा लाते हैं। अर्ज ये है, नहीं आप सॉरी नहीं, ये हकीकत है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखें हमारी गुफ्तगु हो रही है, मैं बात कर रहा हूं कि भाई अल्लाह ने कहां लिखा है कि रिस्क का जवाब देना पड़े? नहीं, अल्लाह ने वसाइल अता किए, अल्लाह ने तकाजे अता किए, आपने इस्तेमाल किया। मैं ये बात कह रहा हूं, आप बीच में रिश्वत ले आए। नुक्ता बदल गया कि नहीं? नुक्ता बदल गया कि नहीं? भाई नुक्ता बदल गया कि नहीं? देखें पूरी गुफ्तगू का नुक्ता तब्दील हो गया, नुक्ता तब्दील हो गया। रिश्वत गलत है। रिश्वत क्या है? आप
रिश्वत तो गलत है, लेकिन उसी से तो वो लोग रिश्ता हराम, तो फिर वही
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप अपनी बात पे इसरार कर रहे हैं, मेरी अर्ज को सुनना गवारा नहीं कर रहे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि रिश्वत क्या है? मैंने आपसे कहा कि आप नाजायज काम करवाने के लिए किसी को गलत ब्राइब कर रहे हैं, हाँ या नहीं? गलत, आप अपने गलत काम को करवाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये आमाल इंसान के हुए या नहीं? ये गलती का नतीजा कौन भुगतेगा? जाहिर है जो कर रहा है वो भुगतेगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, हाँ या नहीं? कि रिश्वत देने और लेने दो वाला दोनों जहन्नमी हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। अरे भाई हराम हलाल को छोड़ो, गलत कर रहे हैं। मैं एक गलत काम करवाने के लिए रिश्वत दे रहा हूं ना, और दूसरा मेरा गलत काम करने के लिए रिश्वत ले रहा है। पहले तो रिश्वत को समझेंगे ना। अल्लाह रब्बे करीम के महबूब तरीन बंदे ने क्या इरशाद फरमाया है? कुरान में तो राशि का लफ्ज ही नहीं है, हदीस में है। क्या फरमाया उन्होंने? कि भाई लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी, यानी गलत काम करने और करवाने वाला दोनों गलत हैं। हाँ या नहीं? तो गलत काम से बाज आना है या कि बातें बहस करनी है?